दिन भर तारीख 10 अक्टूबर दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी दाश। IMF ने कहा लड़खड़ा सकती है अमरीकी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व पर पड़ सकता है असर।
We need to work together to de-escalate and resolve...
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है तूफान तितली। और दुनिया जहान में आज बात जलवायु परिवर्तन की, क्या टल सकेगा ये गंभीर संकट।
1 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है, 1 डिग्री में अगर ये हालत है दुनिया की, 1.5 डिग्री में बहुत और गंभीर रूप ले लेगा।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने नया वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। इंडोनेशिया में वर्ल्ड बैंक के साथ होने वाली बैठक से पहले जारी रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि खतरनाक संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं, खासकर अमरीका में जहां ब्याज दरें बढ़ रही हैं और व्यापार समझौतों को लेकर तनाव है। ये बीते 24 घंटे में IMF की ओर से जारी की गई दूसरी चेतावनी है। इससे पहले IMF ने अगले 2 सालों के लिए विकास की दर कम रहने की आशंका जाहिर की थी। अमेरिका एक शक्तिशाली तूफान के आगमन की तैयारी कर रहा है। यह तूफान तट पर कुछ घंटे बाद पहुंचेगा और इसके और अधिक मजबूत होने की आशंका जाहिर की गई है। माइकल तूफान को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया गया है और 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जाहिर की गई है। फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने कहा,
Now the storm is here. It is not safe to travel across the panhandle. If you are in a coastal
अब तूफान यहाँ पहुँच चुका है और अब तटीय इलाकों में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। अगर आप तटीय क्षेत्र में हैं तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने का समय अब बीत गया है। चीन ने देश के मुस्लिम बहुल स्वायत्त प्रांत शिनजियांग में पुनः शिक्षा कैंपों को अनुमति दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि ये कैंप उन लोगों को बदलने के लिए हैं जो धार्मिक कट्टरता से प्रभावित हैं। शिनजियांग में वीगर मुस्लिम नौजवानों के लापता होने के मुद्दे पर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार मामलों की समिति के समक्ष कहा गया था कि चीन में करीब 10 लाख वीगर मुसलमान ऐसे पुनः शिक्षा कैंपों में हैं। शिनजियांग की सरकार की ओर से लाए गए विधेयक में कहा गया है कि इन कैंपों का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के अलावा व्यवहार को सही करना और वैचारिक शिक्षा देना भी है। ये इस इलाके में धर्म में पर चीन के दखल का पहला पुख्ता सबूत है। चीन ने शिनजियांग प्रांत में इस्लामी प्रथाओं के खिलाफ भी व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन सभी हलाल उत्पादों पर रोक लगाई जा रही है जो खाद्य उत्पाद नहीं है। नए नियमों के तहत मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर भी रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ चल रहे अभियान मी टू के तहत अब जाने माने संपादक और मौजूदा सरकार में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर पर भी आरोप लगाए गए हैं। MJ अकबर पर युवा महिलाओं को बैठक के नाम पर होटल के कमरे में बुलाने के आरोप हैं। ना तो MJ अकबर और ना ही विदेश मंत्रालय ने अब तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी है, लेकिन केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि राजनेताओं पर लगे आरोपों समेत सभी इल्जामों की जांच होनी चाहिए। हाल के दिनों में भारत में महिलाओं ने सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाया है और महिलाएं खुलकर ऐसे मामलों पर बात कर रही हैं। तुर्की की मीडिया ने कुछ वीडियो प्रसारित किए हैं जिनमें सऊदी अरब के लापता पत्रकार जमाल खाशोजी के साथ क्या हुआ इसके संकेत होने का दावा किया गया है। खाशोजी बीते सप्ताह इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास गए थे और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। प्रसारित किए गए वीडियो में खाशोजी के दूतावास जाने से कुछ घंटे पहले सऊदी अधिकारियों के एक दल को दूतावास आते हुए दिखाया गया है। इसके कुछ घंटे बाद ही ये अधिकारी इस्तांबुल से सऊदी चले गए। तुर्की की पुलिस का मानना है कि खाशोजी की हत्या दूतावास के भीतर ही कर दी गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा है कि वो दूतावास से सुरक्षित बाहर चले गए थे। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी ये कार्यक्रम लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती आ सकती है। इंडोनेशिया में एक बैठक के ठीक पहले जारी की गई एक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि व्यापार में बढ़ते तनाव और ब्याज दरों के बढ़ने का बुरा असर अमरीका की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और गंभीर मंदी का दौर आ सकता है। विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर बीते 24 घंटों में IMF की ये दूसरी चेतावनी है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
IMF की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सामने गंभीर मंदी की चुनौती है, लेकिन IMF प्रमुख क्रिस्टीन लैगार्ड के अनुसार व्यापार संबंध सुधारे जाएं तो मुश्किल से निपटा जा सकता है। क्रिस्टीन लैगार्ड कह रही हैं कि हमें मिलकर काम करना होगा ताकि व्यापार के क्षेत्र में जारी तनाव की स्थिति को सुलझा सके। हालत देखकर उदास रहना लाजमी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी और सुधार करने की गुंजाइश है और हम अपने व्यापार बढ़ा सकते हैं। इधर विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो ओजो वेडो का कहना है कि मौजूदा तनाव के दूरगामी असर हो सकते हैं। उनका कहना है कि ऐसा होने नहीं दिया जा सकता और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दुनिया के दो बड़े देश अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जारी है और हाल में कई और दूसरे देशों जैसे इटली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी मुश्किल दौर से जूझ रही है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम का कहना है कि संरक्षणवाद देशों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।
प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज कैन कॉज अ चेन रिएक्शन।
जिम योंग किंग कह रहे हैं कि कई देश व्यापार नीतियों में संरक्षणवाद की नीति अपना रहे हैं जिसका बुरा असर पड़ सकता है। विश्व अर्थव्यवस्था निवेश पर निर्भर है और इस कारण खतरा पैदा हो रहा है कि कंपनियां निवेश करने से पहले सरकारी नीतियों का इंतजार कर रही हैं। हाल में विश्व बैंक ने जो आकलन किया है उसके अनुसार निवेशकों का भरोसा कम हुआ है और इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा। IMF का कहना है कि अमरीकी केंद्रीय बैंक ब्याज की दरें बढ़ा रही हैं जिस कारण निवेशक यहां पैसा लगाना पसंद करेंगे। अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है जहाँ से पैसा देश के बाहर जाना शुरू हो जाएगा। IMF के अनुसार ये आंकड़ा एक साल में $1 खरब पहुंच सकता है और ये अपने आप में एक बड़ा आर्थिक संकट होगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। आर्थिक संकट का असर अमेरिका पर अधिक होगा या फिर इसकी चपेट में आने का नुकसान विकासशील देशों को झेलना होगा? अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों की जानकार सुषमा रामचंद्रन से और उनसे यही सवाल किया।
देखिए, अगर ट्रेड वॉर हो जाए, और शुरुआत तो हुई है ट्रेड वॉर की तरफ के, पहले जो स्कर्मिशेस होते हैं वो शुरू हो गए हैं US और चीन के बीच में, तो ट्रेड वॉर अगर होगा तो सबके ऊपर असर पड़ेगा। आपने शायद सुना होगा कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अमेरिका एक देश है जहां इन्फ्लेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस में नहीं बढ़ता है इतनी जल्दी, लेकिन इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने चीन से जो भी वो आयात कर रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाए हैं और उनका असर नेचुरली मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। चीन में भी वही हाल है, वो टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर डाल रहे हैं और वहां पर बढ़ रहा है। तो बाकी ये जो प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर्स जो हैं जो लग रहे हैं US और चीन के बीच में से, वो बाकी देश भी यही जो है हथियार इस्तेमाल करेंगे आपस में, और अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली इसका डैमेज जो होगा विश्व भर में होगा।
IMF का ये कहना है कि अगर इस तरह के हालात कंटिन्यू करेंगे तो जो पैसा है वो विकासशील देशों से बाहर जाएगा, और चूंकि बैंक ब्याज दर ज्यादा देगी तो बैंकों में ज्यादा पैसा रहेगा बजाय इसके कि वो दोबारा निवेश हो, तो इसका जो है पूरा असर वो अमरीका पर बहुत ज्यादा शायद ना पड़े।
बिल्कुल, जैसे वो कह रही है IMF चीफ, क्योंकि ये जो सब जगह इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं, हमारे देश में भी बढ़ रहे हैं, यूरोप में भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को फायदा होता है कि बैंक्स में पैसा रखें, और अगर आप निवेश करें तो इसमें रिस्क होता है कि मालूम नहीं है आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं। अब इन्वेस्टमेंट किसको चाहिए? हमें चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो, इकोनॉमी का जो गति है वो जरा तेज हो जाए। इंडिया ना चले तो हम उस स्तर पे नहीं पहुंच सकते जहां डेवलप्ड कंट्रीज हैं।
लेकिन अगर आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के पास क्या रास्ते हैं?
रास्ते ये हैं कि हम कोशिश ये करें कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ ना लगाएं। अभी हाल ही में अमेरिका ने हमारी चीजों के ऊपर टैरिफ लगाए हैं और हमने कहा हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं उसके बदले में, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी। तब तक हम अमेरिका से बातचीत कर लेते हैं और हो सकता है कि बातचीत से ही सुलझा जाए, और ये मैं समझती हूँ कि हमें बातचीत से पहले काम करना चाहिए।
आर्थिक संकट का भारत पर क्या असर होगा, बता रही थी वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम में अब रुख भारत के उत्तर प्रदेश का, जहां रायबरेली जिले में आज सुबह हुई एक रेल दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना तब हुई जब तेज गति से जा रही फरक्का एक्सप्रेस के 9 डिब्बे इंजन समेत पटरी से उतर गए। पूरी जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से समीरात्मज मिश्र।
मालदा टाउन से नई दिल्ली जा रही फरक्का एक्सप्रेस के तमाम यात्रियों की अभी नींद भी नहीं खुली थी कि तेज रफ्तार से जा रही उनकी ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और देखते ही देखते रायबरेली और लखनऊ के बीच हरचंदपुर स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। घटनास्थल पर पहुंचे उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के DRM सतीश कुमार ने बताया,
9 कोचेज आपके रेल हैं, 21 जो इंजर्ड हैं जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। तो हादसा बड़ा है क्योंकि एक भी डेथ जो है बड़ा ही हादसा है। सभी पैसेंजर्स को हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि सबको एवोकेट कर लिया गया है और उनको स्पेशल ट्रेन से हम लोग लखनऊ से दिल्ली ले जाएंगे।
यह हादसा कितना भयानक था इसे ट्रेन की बोगियों को बाहर से ही देखकर समझा जा सकता था, भीतर का दृश्य तो दिल दहला देने वाला था ही। हादसे के गवाह रहे यात्री घंटों बाद भी सदमे से उबर नहीं पाए थे।
हम लोग परीक्षा देने जा रहे थे इस गाड़ी में थे और अचानक 6:05 कम था, तब तक अचानक बोगी
पीछे वाले डब्बे में थे ना, आवाज आई थी, धक्का मारी 3 बार, हम लोग नीचे देखे तो पलटी हुई पटरी।
घटना की सूचना मिलते ही रायबरेली के DM और SP समेत तमाम आला अधिकारी वहां पहुंच गए। NDRF की टीमों के अलावा ATS की टीम भी ये जानने पहुंची कि दुर्घटना के पीछे कोई चरमपंथी कार्रवाई तो नहीं है। बाद में ATS की टीम ने ऐसी आशंका से इनकार कर दिया। बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया।
रूही कांप रही थी आदमी की, ऐसा हो गया हादसा, बहुत बुरा हाल था, लोग तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो मर गए उनका तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन जो जिनको चोट लगी है वो तो बहुत ही बुरे हाल थे। बाकी अब आप तो देख रहे,
घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी रेल विभाग ने किया है। राहत कार्य फिलहाल पूरा कर लिया गया है, लेकिन मलबा हटाने और ट्रैक को दोबारा शुरू करने का काम अभी जारी है। पिछले 4 साल में अकेले उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, जिनमें 250 लोगों की जान जा चुकी है। 3 साल पहले रायबरेली के ही बछरावा में जनता एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
बंगाल की खाड़ी में उठा तितली तूफान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्र तट की तरफ बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने कई जगहों पर तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की है। क्या है ताजा स्थिति सुनने के लिए सुनिए ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी सुब्रत कुमार पति की।
क्या होगा कुछ पता नहीं, डर लग रहा है, लगता है कि घर टूट जाएगा, घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, हमें घर छोड़ने के लिए अफसरों ने कहा है। ये आवाज़ है उड़ीसा के गोपालपुर में समंदर किनारे रहने वाली नीलिमा रेड्डी की। उन्होंने हुड़हुड़ और फाइलिन जैसे तूफानों का सामना किया है। वह अब और एक तूफान का सामना करने की तैयारी कर रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तूफान तितली 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कल सुबह ओडिशा के समुद्र तट से टकराएगा। मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा ने BBC को बताया,
अभी 70 से 80 किलोमीटर स्पीड कोस्टल आंध्र प्रदेश के जैसे विशाखापट्टनम का कोस्ट और विजयनगर मत्स्यगम कोस्ट के पास एक्सपीरियंस हो रहा है और ओडिशा कोस्ट के पास विंड स्पीड 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। जब ये साइक्लोन कोस्ट के पास आएगा धीरे धीरे बढ़ेगा विंड स्पीड, इसलिए समुद्र अशांत है। थेटर हाउसेस को एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है कोस्टल एरिया में। 11 से 13 तारीख के बीच में बंगाल, बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय में बारिश बढ़ेगा।
राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग तितली से निपटने की तैयारी कर रही है। स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। 11 एनडीआरएफ और 9 आपदा रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियनों को तैनात किया गया है। साथ ही कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना और वायुसेना को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को भी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से गुजारिश की गई है कि वो इस दौरान छुट्टियां ना लें। विशेष राहत आयुक्त विष्णुपद सेठी ने बीबीसी को बताया कि भारी बारिश और हवा के कारण बिजली के खंभे गिर सकते हैं और कच्चे घरों को नुकसान हो सकता है।
स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन अ लार्ज नंबर ऑफ मेजर्स।
हर जिले में आपातकालीन केंद्र लगाया गया है। हमने राहत और बचाव अभियान के लिए 300 नावों को तैयार रखा है। साथ ही जरूरी सामान के साथ करीब 800 राहत केंद्र भी तैयार किए गए हैं। इधर तूफान तितली के मद्देनजर रेलवे विभाग ने आज रात 10 बजे से खुर्धा रोड और विजयनगरम के बीच ट्रेन सेवाओं को बंद करने का फैसला किया है। बीबीसी के लिए भुवनेश्वर से सुब्रत कुमार पति।
नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री और पूर्व संपादक एमजे अकबर के खिलाफ कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल होने से पहले एमजे अकबर कांग्रेस के सांसद थे। वो दी टेलीग्राफ और दी एशियन एज के संपादक भी रहे हैं। महिलाओं ने अलग अलग पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया पर लेख लिखकर अकबर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मी टू या मैं भी नाम के हैशटैग के साथ वो अपनी आपबीती या अपने साथ हुई घटना के बारे में लिख रही हैं और वो उन लोगों के नाम जाहिर कर रही हैं जिन्होंने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब तक बॉलीवुड से जुड़े कुछ अभिनेताओं, निर्देशकों और बड़े पत्रकारों, संपादकों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। मी टू अभियान का यह नतीजा है कि अब तक कई लोग माफी मांग चुके हैं और कईयों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह से और पूछा एमजे अकबर पर लगे आरोप क्या हैं।
हमारे श्रोता जानते होंगे कि एमजे अकबर द टेलीग्राफ और द एशियन एज के संपादक के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल वो विदेश राज्य मंत्री हैं। कई महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को अपने होटल के कमरे में बुलाया था और फिर उनके घर बिन बुलाए पहुंचे। अब तक जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें से एमजे अकबर का नाम सबसे बड़ा है।
इस पूरे मामले में एमजे अकबर या विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?
एमजे अकबर की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। विदेश मंत्रालय से भी बीबीसी ने इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी, उन्होंने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू जरूर दिया है और जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं ये सोचकर अब सामने नहीं आ पाती थीं कि उनका मजाक बनाया जाएगा और उन्हें शक की नजर से देखा जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि महिलाएं अब इस पर चर्चा कर रही हैं।
सरोज जी, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर मीटू अभियान लंबे समय से चल रहा है, इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ी और जानकारी दीजिए।
आपको याद होगा बीते साल हॉलीवुड निर्देशक हार्वी वाइनस्टाइन पर कई अभिनेत्रियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। कुछ इसी तर्ज पर भारत में भी यह अभियान चल पड़ा है और मीटू अभियान के तहत कई महिलाएं इस गंभीर मुद्दे पर अपनी बात सामने रख रही हैं। इसमें पत्रकारिता जगत से भी कई महिलाएं सामने आई हैं और कुछ बॉलीवुड के जगत से भी सामने आई हैं। तो हमने तो एमजे अकबर के बारे में बात की, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अभिनेत्री तनुश्री दत्ता से हुई थी, जिन्होंने अभिनेता नाना पाटेकर और एक फिल्म निर्देशक पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। उसके बाद क्वीन फिल्म के निर्देशक विकास बहल पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। फिल्मकार विकास बहल पर जिस महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया वो फैंटम फिल्म प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी। फैंटम के संस्थापक फिल्मकार अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंतेना और विकास बहल हैं। मामला जब सामने आया उसके बाद अनुराग कश्यप ने भी अपनी गलती मानी और ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि वो फैंटम को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने इसकी घोषणा ट्विटर पर की।
जानकारी के लिए धन्यवाद सरोज सिंह। और अब वक्त हो चला है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता बढ़ी है। हमारी दुनिया गर्म हो रही है, यानी धरती का तापमान साल दर साल बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाने के लिए तुरंत अभूतपूर्व कदम उठाने को कहा है। स्थिति कितनी गंभीर है और इसकी वजह से किन देशों के सामने खतरा है, इस बार दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने यही पड़ताल की।
दुनिया जहान। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के 6 दिन बाद पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले आला वैज्ञानिकों ने दुनिया को कड़ी चेतावनी दी। 3 साल के गहन शोध और 1 हफ्ते तक दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में तमाम सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मंथन और बहस के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न महात्मा गांधी का जिक्र था और न उनकी जीवन शैली की बात थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो कहा उससे दुनिया के कई पर्यावरणविदों को गांधी याद आ गए। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC ने जारी की है और लगातार गर्म होती दुनिया पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने इसे आखिरी चेतावनी बताया है। लंदन में मौजूद BBC के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का के मुताबिक ये रिपोर्ट आगाह करती है कि स्थितियां नहीं बदली तो दुनिया के कई हिस्सों में हालात भयावह हो जाएंगे।
कार्बन अगर इसी हिसाब से बढ़ता गया तो देखिए जीना हराम हो जाएगा, तो इसीलिए खास करके गरीब मुल्क जो हैं और जो टापू देश हैं और आर्कटिक, ये 3 जो कैटेगरीज में है, लोग रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE के क्लाइमेट चेंज डिवीजन की प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर विजेता रतानी कहती हैं कि ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है।
IPCC रिपोर्ट हमें ये कह रही है कि ये 1 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है, 1 डिग्री में अगर ये हालत है दुनिया की तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत और गंभीर रूप ले लेगा। अगर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये तो फिर प्रलय की बात है कि उसके बाद फिर हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, ना हम इस दुनिया को बचा पाएंगे।
और अब खतरा ये है कि यही रफ्तार रही तो तापमान 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। पर्यावरणविद कहते हैं कि रिपोर्ट में जिन खतरों का जिक्र है वो सामने दिख रहे हैं। जिस वक्त ये रिपोर्ट जारी की गई तब दुनिया में सबसे ताकतवर समझे जाने वाला मुल्क अमेरिका माइकल तूफान से बचाव की कोशिश में जुटा था। इसके पहले सितंबर में आए फ्लोरेंस तूफान ने अमेरिका में लाखों लोगों को प्रभावित किया था। नवीन सिंह खड़का कहते हैं कि कुदरत का बदलता मूड दुनिया के हर देश को डरा रहा है।
अमेरिका में समेत हम ये देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख चुके हैं, और देखिए यहाँ लंदन, यहाँ जो UK ब्रिटेन में इस बार जब इतनी गर्मी हुई और यहाँ के जो घास जो है, जो हरियाली होती है यहाँ जब वो घास जड़ कर जो राख बन गए, वो तो यहाँ इतनी ये लोग डर गए हैं कि ये सब और हो रहा है।
लेकिन क्या ताकतवर देश वाकई डरे हुए हैं? साल 2015 में पेरिस में दुनिया भर के देशों ने एक समझौते पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य तय किया गया। लेकिन साल 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से किनारा कर लिया।
My solemn duty to protect America and its citizens. The United States will withdraw.
अमेरिका और इसके नागरिकों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यूनाइटेड स्टेट पेरिस के जलवायु समझौते से अलग हो रहा है।
ट्रंप ने चीन और भारत जैसे देशों का हवाला देते हुए समझौते की शर्तों पर सवाल उठाए।
Under the agreement, China will be able to increase these emissions.
इस समझौते के तहत चीन उत्सर्जन को 13 सालों तक बढ़ाता रहेगा। वो 13 साल तक जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे।
जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले ताकतवर देश ऐसा रुख रखेंगे तो क्या संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा? इस सवाल का जवाब पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार सोपान जोशी कुछ यूं देते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में इसकी बातचीत होती है, सभी देशों की सरकारें वहाँ ऐसे लोगों को भेजती हैं जो कूटनीति से बात ऐसी करें जिससे लगे कि वो सब सचेत हैं, लेकिन जब करने का समय आए तो अपने ऊपर कम से कम जिम्मेदारी लें। करने का मौका आता है तो सभी देश ये कहते हैं हाँ भाई आपको करना चाहिए, खुद कोई करने को तैयार नहीं है।
डॉक्टर विजेता की राय है कि अमेरिका के समझौते से बाहर आने के बाद दूसरे देशों पर दबाव कई गुना बढ़ गया है।
अब जब US ने विड्रॉ कर दिया है तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि बाकी देशों के लिए फिर बहुत प्रेशर है कि कौन वो जगह पूरी करे।
तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने की तरफ बढ़ने में दिक्कतें और भी हैं। वैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करने और जमीन के इस्तेमाल के तरीकों में बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। शहरों की जीवन शैली के साथ उद्योगों को चलाने के तरीके भी तब्दील करने होंगे। नवीन सिंह खड़का कहते हैं कि बात सिर्फ कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने से नहीं बनेगी।
इस रिपोर्ट में एक अलग सी बात ये कह रही है लोग कि जो कार्बन उत्सर्जन घटाना है जो हम कारखाना गाड़ी या फिर जो उत्सर्जन हम करते हैं ये सब रोक दें, इससे सिर्फ नहीं होने वाला। तो अब चाहिए क्या कि ऐसी तकनीक जो हवा में या फिर वायुमंडल में जो कार्बन जा चुका है उसे भी सोच ले, उसे सोच कर स्टोर करना है, ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर ये हो पाता है तो जो ये 1.5 डिग्री का लक्ष्य है ये शायद प्राप्त तो हो।
इन सब उपायों को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत है। नवीन सिंह खड़का को सुनिए।
ग्लोबल जीडीपी का जो है 2.5% पैसा इसमें जाना है, $2.5 trillion हर एक साल जाना है, बहुत ही बड़ा पैसा है।
लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर बाधाओं की वजह से दुनिया अब आंखें बंद करके बैठेगी तो बाद में खर्च कई गुना बढ़ चुका होगा। वो आगाह करते हैं कि तापमान बढ़ता रहा तो दुनिया के दोनों ध्रुवों पर बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होगी, समंदर का जलस्तर बढ़ जाएगा, मालदीव और प्रशांत क्षेत्र के कई द्वीपीय देशों का अस्तित्व खतरे में होगा, दिक्कतें अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी होंगी। लेकिन नवीन सिंह खड़का को अफ्रीका और एशिया की चुनौतियां ज्यादा मुश्किल दिखती हैं।
जो गरीब देश हैं, टापू देश या फिर अल्प विकसित देश जो हैं, ज्यादातर जो इनमें से जो अफ्रीका में है और दक्षिण एशिया में भी कई हैं, तो इनकी जो प्रिपेयरनेस कहते हैं ना, फर्क वहां आता है। तो अमेरिका को इस तरह की अगर सामना करना पड़े इससे जूझने के लिए वो जो तैयारी है वो होता है, लेकिन गरीब मुल्क में ये तैयारी, ये पैसा, ये सब चैलेंजेस हैं। इसीलिए साइंटिस्ट का बार बार ये वार्निंग है कि 1.5 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, सबसे ज्यादा मार खाएंगे यही गरीब वल्नरेबल कम्युनिटीज।
भारत के सामने मौजूद खतरों पर सोपान जोशी कहते हैं,
भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा संकट पानी का होगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इस उपमहाद्वीप में बसती है और उसकी जान मानसून नाम के तोते में फंसी है।
दिन ब दिन बढ़ते खतरे के बीच बातें सिर्फ मायूसी की नहीं है। डॉक्टर विजेता कहती हैं कि वैज्ञानिकों ने उम्मीद की खिड़की की तरफ भी इशारा किया है।
1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन IPCC खुद ही हमें होप दे रही है, हमें आश्वासन दे रहा है कि ये असंभव नहीं है।
ये कितना मुमकिन है इसका सही इशारा दिसंबर में तब मिलेगा जब दुनिया भर के देश पोलैंड में पेरिस समझौते की समीक्षा के लिए बैठेंगे। लेकिन क्या सारी दुनिया को सरकारों के भरोसे ही बैठे रहना चाहिए?
अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से हम जीते हैं उसे ही चेंज करना है। क्या खा रहे हैं? अगर आप मांस खा रहे हैं जिस मांस की वजह से ये कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, और देखिए गाड़ी, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी कम चलाएं, हो सके तो मास ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रयोग करें।
एक इंसान क्या कर सकता है वो इम्पोर्टेंट है, खपत हम अपनी कम करें। जो गांधीयन कॉन्सेप्ट था कि उतना ही लीजिए जितना कि आपकी जरूरत है, वो सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण है वो सोच।
ग्रीन पीस की कैसा कोसेनन ऐसी ही समझ विकसित करने का आग्रह करते हुए कहती हैं कि वैज्ञानिक शायद बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हैं, एक्ट नाउ इडियट्स। अल्लामा इकबाल के शब्दों में थोड़ी तब्दीली करके इसका मायना समझाएं तो ये इस तरह होगा, न समझोगे तो मिट जाओगे दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।
दुनिया जहान का ये अंक आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले विश्व समाचार दिलनवाज पाशा से।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने नया वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। चीन ने देश के मुस्लिम बहुल स्वायत्त प्रांत शिनजियांग में पुनः शिक्षा कैंपों को अनुमति दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि ये कैंप उन लोगों को बदलने के लिए हैं जो धार्मिक कट्टरता से प्रभावित हैं। चीन ने शिनजियांग प्रांत में इस्लामी प्रथाओं के खिलाफ भी व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन सभी हलाल उत्पादों पर रोक लगाई जा रही है जो खाद्य उत्पाद नहीं हैं। सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ चल रहे अभियान मीटू के तहत अब जाने माने संपादक रहे और मौजूदा सरकार में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर आरोप लगाए गए हैं। एक ब्रिटानिया अदालत ने लंदन में करोड़ों रुपए की खरीदारी करने वाली महिला की पहचान जाहिर की है। जमीरा हाजीएवा अजरबैजान के एक बैंकर की पत्नी है जो भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों में जेल में बंद है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया कपिल देव सिंह ने। आपसे अगली मुलाकात होगी सवेरे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल सभी साथियों समेत मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।